ओम शांति। आज इस सुंदर से सत्र में जो हम फैमिलीज के सशक्तिकरण की, वुमेन के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और उस किसी भी परिवार के लिए जो सबसे आवश्यक बात होती है वो होती है बच्चे। जो घर बच्चों से महकता रहता है उसी का नाम परिवार है, और जब बच्चे नहीं होते तो वो बहुत सूना सूना सा प्रतीत होता है। लेकिन बच्चे अगर प्रॉब्लम बन जाएं तो फिर ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो हमारा परिवार, हमारा संसार बच्चों से महकता रहे, सुगंधित रहे, हमारे परिवार सदा खुशहाल रहे अपने बच्चों के साथ साथ, क्योंकि आज का बच्चा कल का ईश्वर। तो इसलिए बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना और बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसमें बच्चों को क्या करना है और हमें क्या करना है, कोई भी काम के लिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों का बहुत योगदान होता है। तो बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और बच्चों की प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना है, आज इस विषय पर हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप सबको पता है ना, केवल सामने जो हैं वो नहीं, आप सबको भी कुछ, क्योंकि वहां पर हम देख रहे थे बाकी सब प्रोग्राम्स में तो डायस वाले ही बोलते थे नीचे वाले, और आज यहाँ वाले थोड़ा सा बोलेंगे और यहाँ वाले जो इच्छा हो वो बोलेंगे, बट विथ डिसिप्लिन। तो हमारे बीच में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, आप सब जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ हमारी दीप्ति दीक्षित जी, दीप्ति दीक्षित डॉक्टर जी हैं। हाँ, वेलकम, प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम। भाई ताली बजाकर बहुत दिल से स्वागत करते हैं, और बहुत, वैसे तो आप जितने भी यहाँ पर पधारे हैं आप सबकी बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत अच्छे स्टैंड्स हैं आपके, यहाँ आना अपने आप में एक स्टैंड है ना, क्योंकि यहाँ पर हमको ये पता लग गया, आज पता लगा था हमको, क्या कल पता लगा था हम कौन हैं, और आज पता लगा था हम किसके हैं, है ना, इससे बड़ा स्टैंड और कोई नहीं है, है ना। तो किंतु फिर भी हमारे बीच में दीप्ति दीक्षित जी हैं, आप फिनेंशियल लिटरेसी ट्यूटर हैं, एकेडेमिक कंटेंट राइटर हैं, जूमवा इंस्ट्रक्टर हैं, पीजीटी इको हैं, कैबिन क्यू भी हैं, और बहुत सारे एनजीओज में भी आप सेवा करती हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा देखकर, एनजीओ फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, एनजीओ फॉर ऑर्फन्स, और ऐसी बहुत सेवाओं से आप जुड़ी हुई हैं। अपनी जो भी बात कहेंगे उससे पहले हम आपकी सुनेंगे, तो फिर से हम आपका ताली बजाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परहेज आप तो माँ है ना?
हाँ जी।
और आपके पास बच्चे भी हैं, आपके बच्चे कैसे हैं?
मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं।
अच्छा फिर तो यहाँ तो बच्चों की प्रॉब्लम, पर तो आसपास के बच्चों को भी आप देखती हैं, तो उन बच्चों में
मतलब ये नहीं उनकी प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, तो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, तो उसी अनुभव से आप हमारे साथ शेयर करेंगी कि बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, और फिर आप सब भी अपने अपने बच्चों से संबंधित जो बात है आप चाहे तो प्रॉब्लम बताएं, और चाहे प्रॉब्लम बताकर आप में से कोई सॉल्यूशन बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं, नहीं तो हम दोनों भी ट्राई कर लेंगे आपकी प्रॉब्लम।
वी आर ऑल्सो लर्निंग।
ओम शांति, ओम शांति। मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने मेरा, कि मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, कैबिन क्रू रह चुकी हूँ, अभी नहीं हूँ, 20 इयर्स पहले थी, अभी नहीं हूँ, इट्स बीन मोर देन 20 इयर्स आई थिंक, अब तो मैं भूल भी गई हूँ। तो आई वॉज एसोसिएटेड विद द नेशनल कैरियर इंडियन एयरलाइंस विच इज नाउ एयर इंडिया। तो उधर का अपना एक्सपीरियंस है, पर सेशन की शुरुआत में इससे करना चाहूंगी कि मेरे माता पिता भी इसी सभा में बैठे हैं एंड वो लास्ट 25 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारीज में डिवोटेड हैं, और इसीलिए मैं 20 ईयर्स पहले एज अ स्टूडेंट एज अ पार्टिसिपेंट आई थी इस वर्कशॉप में, और आज मैं यहाँ पे एज अ स्पीकर आई हूँ। तो ज्ञान मैंने जब क्लास 11th में थी तब से लिया है, 7 days कोर्स किया है, पर कहते हैं ना बाबा ने हर एक को अपना अपना रोल दिया है, तो मेरा रोल शायद कुछ और था इसलिए मैं शायद मेन स्ट्रीम में नहीं आई, पर जो भी बाबा का हुक्म है, जो भी जो भी उन्होंने रोल दिया है वो सर आंखों पे, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने हर रोल अपने तहे दिल से 100% दे के निभाया है, फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट। कभी किसी की चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, उनकी सेवा में या जो मेरी परवरिश की है मेरे माता पिता ने, मैंने कभी भी उनका सर झुकने नहीं दिया, आई होप। यस, तो कभी भी मतलब जो भी ड्यूटीज मुझे मिली हैं अपना 100% देने में मैं बिलीव करती हूँ। 100 का 99 भी होता है तो मुझे कहीं लगता है मैं थोड़ा शायद कुछ और कर सकती थी, तो शायद ये मेरी एक बेसिक नेचर रही है और क्यूरियोसिटी नेचर रही है, ताकि क्योंकि मुझे नई नई चीजें सीखने में बड़ा मजा आता है, तो वही मैंने चीजें अपने बच्चों में भी डेवलप करने की कोशिश की है कि एक तो आप कभी भी लर्न करना मत भूलिए, आप कोई भी एज ग्रुप में हो आप हमेशा लर्न करते रहिए, वो मैंने अपने बच्चों में देने की कोशिश की है और अभी तक तो सक्सेसफुल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे काफी क्यूरियस रहते हैं हर चीज को जानने के लिए, स्पेशली माय सन, ही इज इन क्लास 7th, माय डॉटर इज इन क्लास 12th, सो अभी तक भी वो कहते हैं ना बीज आप देते जाइए एज अ मदर। चाहे मैंने इंडियन एयरलाइंस में वर्क करने के बाद, इट वॉज अ 15 ईयर्स ऑफ सपैटिकल, आई डिड नॉट वर्क, आई वॉज अ हाउस वाइफ एंड अ प्राउड आर्मी वाइफ, माई हस्बैंड इज इन द आर्मी, सो आई एम अ प्राउड आर्मी वाइफ ऑल्सो, क्योंकि वो जब देश सेवा करते थे तो मैं घर संभाल रही होती थी उनका एक स्ट्रांग पिलर बन के। तो मैंने अभी पीछे डिस्कशंस हमारे घर में ओपनली होती रहती हैं, तो मैंने उनसे पूछा ऐसी डिस्कशन में, उन्होंने बताया कि तुम बच्चों तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी, हमारी टिपिकल अरेंज मैरिज थी, कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी मम्मी में क्या एक कह लीजिए गुण देखा या एक बात देखी, मुझे ये लगा कि अगर जब मैं अवे एट द ड्यूटी कर रहा हूँ अपनी बॉर्डर पे, ये एक लेडी मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, मेरे बच्चों का पीछे से ध्यान रख पाएंगी एंड वो मुझे हेल्प करेंगी, ताकि मैं अपनी ड्यूटी बॉर्डर पे, उनकी बहुत सारी पोस्टिंग्स रही हैं ऐसी जगह पे, अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट और वाईफाई सबके जमाने में, पर एक कॉल के लिए आई यूज टू वेट फॉर थ्री डेज फॉर जस्ट 1 minute ऑफ हेलो आई एम फाइन, उससे आगे बात हो नहीं पाती थी क्योंकि लंबी लाइन लगी होती थी, अगर वो मुझसे 2 minute ज्यादा देर बात करेंगे तो शायद एक और अपने घर पे बात नहीं कर पाएगा। सो दैट वॉज द सिनेरियो विच आई वॉज, एक कहते हैं ना नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, कभी कभी नो न्यूज आती थी तो भी वो गुड न्यूज ही लगती थी कि चलो आज सब कुछ शांत है, कोई ऐसी खबर नहीं आई तो सब ठीक ही होगा। तो वो जो एनर्जी ड्राइव करती थी वो एक तो आपका एनर्जी इन द ऑलमाइटी, द बिलीफ, द कॉन्फिडेंस इन द ऑलमाइटी कि बाबा सब देख रहा है, सब सुन रहा है, आपकी दिल से जो आवाज निकलती है वो उस तक जरूर पहुंचती है। तो ये तो मैंने अभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत बहुत अकम्प्लिशमेंट, छोटी छोटी कहते हैं ना यहां आने के लिए भी, सिंस आई एम वर्किंग इन अ एडटेक स्टार्टअप which has a platform which teaches financial literacy to kids and teens in India as well as international. तो अभी उनका platform change हुआ था, तो 15 days से मेरे पास कुछ new students के जो हम demos लेते वो नहीं आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी ये क्या हो गया, मतलब I was going very strong in that field, तो मेरे को ये लगा कि हो सकता है क्योंकि मेरी responsibilities कम करने के लिए, ताकि मैं easily यहाँ पे आ पाऊँ, मुझे किसी को answer ना देना पड़े unnecessarily, कोई बहाना ना बनाना पड़े जो कि मैं कभी नहीं बनाना चाहती। आई एम ऑलवेज वेरी ओपन टू माई बॉसेस, honesty इज द बेस्ट पॉलिसी, जो आप काम कर रहे हैं करते चलिए एंड अपना सारा रास्ता आपके लिए अपने आप खुलता चला जाएगा। तो वो एक बिलीफ इन द यूनिवर्स, इन द ऑलमाइटी, इन द परमपिता परमात्मा में हमेशा रहा है कि आप दिल से 100% दीजिए और वो आपको वापस मिलेगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग कल से दो दिन से यही सुन रहे हैं कि मदर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और नारी सशक्तिकरण, फैमिली एम्पावरमेंट, फैमिली एम्पावरमेंट एंड वेमेन एम्पावरमेंट, जैसे हमने सुना था, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स यू नो गोज पैरेलली, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक लेडी का रोल जो होता है फैमिली में वो मेल नहीं कर सकता, जो मेल का रोल है वो चाहे फिर भी लेडी कर पाए, आई कैन बी 100% श्योर ऑन दैट, क्योंकि वो रोल हम फिर भी शायद एक पल तक कर पाए, नो ऑफेंस टू द मेल्स ओवर हियर, बट सीरियसली ये मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है बीइंग इन द आर्मी वाइफ, क्योंकि आपको वो सारे काम भी करने पड़ते हैं उनकी एब्सेंस में जो आप कभी कभी नहीं सोच पाते कि आप कर पाएंगे, पर आप कर लेते हैं। तो फॉर अ चिल्ड्रन आई फील बोथ पेरेंट्स, मदर एंड अ फादर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा सा मदर्स का रोल ज्यादा है, बिकॉज कहते हैं ना वी हैव यू नो नर्चर्ड द चाइल्ड इन अ वूम्ब, हम 9 महीने अपने कोख में बच्चे को पालते हैं, उसका उसके जितने भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो हमारे थ्रू ही होती हैं, तो वो रोल नेचर ने जो हमें दिया है वो हमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको आगे कैसे और बढ़ाना है और कैसे उसमें यू नो वेरिएशंस आते रहते हैं, क्योंकि हर स्टेज की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, जब बच्चा छोटा होता है तब प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, जब वो एक टॉडलर होता है तब उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, और टीनेजर्स में तो प्रॉब्लम्स का भंडार है आजकल तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं सारे एज ग्रुप से डील कर चुकी हूं इसलिए, और मेरे खुद के बच्चे भी, दे आर बोथ ऑफ, वन इज प्री टीन्स एंड वन इज अ टीनेजर जस्ट टर्निंग 17 इन फ्यू मंथ्स, तो मेरा तो काफी उनके साथ इंटरेक्शन और एग्जाम्पल यही रहा है कि आपको अपना रोल एज अ मदर, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, ये सब रोल्स आपको प्ले करने पड़ते हैं एज द टाइम कम्स, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं आपका रोल चेंज होता रहता है, कभी आप उनको एज अ गाइड, आप उनकी फर्स्ट टीचर तो है ही हैं एज मदर्स, बट उसके बाद वो जब टीनेजर्स में आते हैं तो यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड, यू हैव टू शेयर, बी ओपन, आप किसी भी चीज को उनके, क्योंकि आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बच्चों में इतना अवेयरनेस है, बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है, एवरीबडी इज यू नो 100% इन नॉलेज, सबके पास नॉलेज है, सबके पास रिसोर्सेज है, बस उस रिसोर्सेज को कैसे हम यूटिलाइज करें वो हमें एक घर से फैसिलिटेट करना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज कई बारी ऐसी चीजें हो जाती हैं सोसाइटी में जो कि इररिपेरेबल होती हैं, लाइक अभी अगर आप में से किसी को याद हो 2 साल पहले ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एक केस आया था, दैट वॉज कंसिडर्ड अ बॉयज लॉकर रूम, अगर किसी ने सुना हो तो, विच वॉज वेरी वेरी आई मीन शॉकिंग, बिकॉज वो एक रिप्यूटेड दिल्ली स्कूल के बच्चे थे, उनका व्हाट्सएप ग्रुप था और वो ऐसी ऐसी बातें उस ग्रुप में कर रहे थे अपनी ही क्लासमेट के लिए, जो कि बहुत ही सोचने में भी शर्म आ जाए ऐसी ऐसी बातें, तो ये सब चीजें कहाँ से वो लोग सीख रहे हैं, कोविड टाइम्स में है, घर में बंद है, ठीक है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा थोड़ा ये, पर उस समय फैमिली पेरेंट का क्या रोल था, क्या रोल होना चाहिए था, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए थी, और वो भी अपनी ही क्लासमेट, जिस लड़की को आप रोज देखते हैं, आप उनसे रोज मिलते हैं, जिसके साथ आपका उठना बैठना है, तो ये सब जो है, एक फैमिली इज द फाउंडेशन स्टोन एंड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सोसाइटी, जो हमें बहुत स्ट्रांग करनी है, क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं ना आज सोसाइटी में ये हो रहा है वो हो रहा है, सोसाइटी किससे बनी है, हम ही लोगों से सोसाइटी बनी है, तो उस चीज की अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर है, हम ही लोगों के ऊपर है, अगर हम लोग अपने अपने रोल में, अपनी अपनी फैमिलीज में ऐसा रोल प्ले करेंगे कि हमारे बच्चे आगे जाके 10 और बच्चों को बोलें कि आप ये गलत कर रहे हैं, गलत सही की सीख उनको हर सीख स्कूल से नहीं मिलती, स्कूल इज हैज अ इम्पॉर्टेंट रोल बट हर चीज उनको स्कूल से नहीं मिल सकती, क्योंकि कई बार टीचर्स के पास भी लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, कई बार बच्चे उस लिमिटेड टाइम पीरियड में सब्जेक्ट पढ़े या अपनी बातें शेयर करें वो भी नहीं हो पाता, वेल इट ऑल डिपेंड्स कि आपका रोल एज अ टीचर, एज अ मदर किस जगह पे कैसा है, बट बच्चों को प्रॉब्लम बोल देना ये मैं सोचती हूँ अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि बच्चा प्रॉब्लम तभी बनता है जब वो खुद प्रॉब्लम में होता है, जब वो खुद प्रॉब्लम में होता है तभी वो कुछ प्रॉब्लम बनता है सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो पहले उसके दिल में झांक के देखें कि वो प्रॉब्लम है क्या, द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग। और ये सब फीलिंग्स, ये सब थॉट्स मुझे लगता है एक माँ से ज्यादा एक बच्चे को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जन्म के टाइम पे भी एक अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा जुड़ा होता है जो कट हो जाती है, पर मुझे लगता है माओ में वो सिक्स सेंस, वो अम्बिलिकल कॉर्ड का एक फीलिंग हमेशा रहता है विच इज नेवर ब्रोकन। सो मदर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द चाइल्ड पर्सनैलिटी, डेवलपिंग द चाइल्ड साइकोलॉजी, और मदर की साइकोलॉजी बच्चे पे बहुत डिपेंड करती है। तो पहले हम खुद रिचार्ज और खुद रिप्लेनिश होंगे तभी हम किसी दूसरे का घड़ा भर पाएंगे। तो खुद रिचार्ज रिप्लेनिश होने के लिए आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए ऑल माइटी से, जिस भी में आप बिलीव करते हैं सच्चे दिल से। और ये राज मैंने एमएससी इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ भी किया है, जिस जो एनामेला यूनिवर्सिटी एंड ब्रह्मा कुमारीज के कोर्स का अमेलगमेशन है, उसमें मैंने यही देखा कि आप चाहे साइंस साइकोलॉजी की बात कर ले, द मेन पॉइंट सब कुछ आके एक स्पिरिचुअलिटी पे खत्म हो जाता है। सब चीज का आंसर स्पिरिचुअलिटी में आपको मिल जाता है, आपको बस अपना माइंड ओपन रखने की जरूरत है। एवरीथिंग कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि कितने सारे मेंटल डिजीजेज हैं जिनकी मेडिसिन हैं, दे आर ट्रीटेबल विद मेडिसिन ऑल्सो, बट मेडिसिन आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दे आर नॉट लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इवन डिप्रेशन की भी मेडिसिन है, लोग नींद की गोलियां खाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है वो। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तभी है जब आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप को अंदर से टटोलेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम जो मैं बाहर सोच रहा था मेरे अंदर ही तो नहीं है। यू हैव टू थिंक, और उस चीज के लिए आपको अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अवेयरनेस अपने वेयर यू आर, हु यू आर एंड व्हाट इज योर रोल हेयर, आपको वो चीज अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर हम अवेयर रहेंगे, हम एम्पावर्ड रहेंगे, तो हम दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं। दूसरे में सबसे पहले घर के बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अलावा कोई और नहीं लेगा। तो ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं कह सकते कि मैं बाहर इतना काम करती हूं तो मैं घर के बच्चों को नहीं देखूं। ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ देम इन दिस वर्ल्ड, एटलीस्ट आपके थ्रू वो आए हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको प्रॉपरली उनके साइकोलॉजी को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उनको सुने, उनको नजरअंदाज नहीं करें। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरी एक नेबर थी व्हेन आई वाज स्टेइंग इन फरीदाबाद, वो नेबर मुझे बोलती थी उनकी बेटी बहुत फरीदाबाद के एक रिप्यूटेड स्कूल में पढ़ रही थी, शी वॉज अ ब्रिलियंट किड, बट वो मुझे एक बार पूछ रही थी कि जब भी वो मेरी बेटी घर आती है स्कूल से तो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, बात नहीं करती मुझसे और शाम तक उसका मूड खराब रहता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर वो जब घर पे आती है तो आप उसको कैसे रिसीव करते हो? कहते मैं उसको बोलती हूँ एक पानी का ग्लास दे देती हूँ, कहती हूँ अपने कपड़े जाके चेंज कर लो, अपना मुंह हाथ धो लो। मैंने कहा आप इसमें अगर थोड़ा सा अपने में चेंज लाओ, आप अगर मुझे ये बता रहे हैं कि आप जब वो घर में आती है आप किसी काम में बिजी होते हैं या अपना मोबाइल देख रहे होते हैं, तो आप उसको 15-20 मिनट के लिए एक 15 मिनट का ये स्लॉट बना लीजिए, जब बच्चा घर में आए उसे आप पानी दीजिए, ड्रेस चेंज करने के लिए बोलिए, उसके बैठ के 5 मिनट बात कीजिए, बेटा हाउ वाज योर डे, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल, हर पीरियड में क्या हुआ। मैंने कहा इसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, सिर्फ 15 मिनट्स। आई नो वर्किंग मदर्स हैं, कई बार हमारे पास भी टाइम नहीं होता, बट वी कैन ऑलवेज स्पेयर टाइम 15 मिनट्स, क्योंकि जब वो बच्चा स्कूल से क्या क्या चीजें लेकर, क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करके घर में आ रहा है, उसको एक ही सोर्स दिखता है, मेरी माँ तो है इधर। पर माँ अगर फिजिकली और मेंटली अवेलेबल ही नहीं है तो बच्चा कहाँ जाएगा। तो मैंने उनको सिर्फ 1 वीक के लिए, मैंने कहा आप ये 1 वीक करके देखो फिर आप मुझे बताना। तो शी टोल्ड मी, शी केम बैक टू मी एंड शी सेड देयर वॉज अ ड्रास्टिक चेंज, दोज 15 मिनट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब बच्चा घर पे आया है आप उसको सीधा इंस्ट्रक्शन देना मत शुरू कर दीजिए कि आप ये करिए आप वो करिए, आप पहले उससे पूछिए, क्योंकि वो भी तो कहीं बाहर से आया है ना, आप पहले पूछिए कि क्या कैसा रहा उसका दिन। वो इतनी सारी बातें वेंट आउट करेगा कि आप आप सोच भी नहीं सकते। फिर कई बार मदर्स को चुप कराना मुश्किल हो जाता है कि अब आप बस कीजिए। तो ये एक्सरसाइज मैं भी अपने बच्चों के साथ करती हूँ। नो मैटर हाउ बिजी आई एम, आई ऑलवेज यू नो एज पर देयर टाइम आई स्पेयर माई टाइम, कि मेरा फ्री टाइम और उनका फ्री टाइम कोइंसाइड करना चाहिए, ताकि हम एक चाहे अपने अपनी लाइफ में कितना भी बिजी रहे, हम वो फ्री टाइम एक दूसरे को दे पाए, क्वालिटी टाइम दे पाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज से काफी चीजें सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा शेयर करने लगता है तब आपको पता लगता है कि उस बच्चे के एक्सटर्नल लाइफ में क्या चल रहा है अदर देन होम, व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द लाइफ, इन द विद इन द पीयर ग्रुप, विद द टीचर्स, विद द स्कूल, एवरीथिंग। इवन माई चिल्ड्रन टेल मी कि अगर वो बाथरूम भी जाते हैं, मतलब इतनी इतनी छोटी छोटी डिटेल्स मुझे आके बताते हैं ना, कि मतलब मैं ये अप्रिशिएट करती हूँ कि आई हैव केप्ट दैट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन विद देम ऑलवेज। कभी भी मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि अगर आप गलती भी करके आएंगे ना, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी रादर देन आई हियरिंग फ्रॉम द थर्ड पर्सन। आप गलती भी करेंगे, आप घबराइए नहीं, योर मदर इज देयर, योर फादर इज देयर, वी विल गिव यू सोल्यूशन टू दिस। तो जब ये कॉन्फिडेंस हम बच्चे में बिल्ड करते हैं तो वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अपने आप ही ओपन रहता है। तो आजकल क्या है कि ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही काफी हद तक डिप्लीट हो गया है, क्लोज हो गया है, क्योंकि कम्युनिकेटिव चैनल को रन थ्रू करने के लिए कम्युनिकेशन हैज टू बी बोथ वेज। आपको पूरा दोनों तरफ का तार बिल्कुल स्मूथ चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन फ्लो करेगा। I hope I am making some sense to you. Thank you so much. So, and secondly, जो मैंने आजकल के बच्चों में observe की है, वो काफी हद तक instant gratification में believe करते हैं कि patience नहीं है, अभी कोई चीज demand करी और वो अभी हो जानी चाहिए, अभी instant gratification. Through our financial literacy programs also, we teach the children how to delay, how to have patience. कि आप अभी अगर रुक जाएंगे, हो सकता है आपको अभी 5 मिनट की देरी से एक बड़ा रिवॉर्ड फ्यूचर में मिले, क्योंकि जब इस रिवॉर्ड की होप होती है ना, एज अ किड आप मेंटली आप साइकोलॉजिकली वायर्ड हो जाते हो कि ठीक है, मुझे कोई भी डिसीजन इम्पल्सिवली नहीं लेना है, मुझे वेट करना है। हम फाइनेंशियल लिटरेसी में ये बताते हैं, बच्चे मॉल्स में जाके अपने पेरेंट्स से बहुत चीजें डिमांड करते हैं, यू मस्ट हैव सीन टॉलरेंस लाइंग ऑन द फ्लोर कि मुझे यही टॉय चाहिए। हम उनसे ही पूछते हैं कि अगर आप वो उस टाइम वो टॉय ले लेते, उसके लिए आपने जो मनी स्पेंड किया होता और अगर आपने वो मनी सेव करके कहीं रखा होता, तो कुछ टाइम के बाद वो आपके पास एक सेविंग हो जाती ना। योर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विल गिव यू ओनली द डिजायर रिजल्ट इमीडिएटली, छोटा रिटर्न, एक सिर्फ टॉय। अगर आप उसको एक्यूमुलेट करेंगे, उसको सेव करेंगे, आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे, तो यू कैन हैव समथिंग मोर एंड बेटर इन फ्यूचर। सो दिस इज अ लाइफ स्किल विच वी टीच द चिल्ड्रन हाउ टू प्रैक्टिस इट, एंड थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग हम उनको ये बताते हैं। तो मुझे ये लगता है आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप ये सब वैल्यूज अपने बच्चों में थ्रू देयर लाइफ एग्जाम्पल्स, जिस भी फील्ड से वो हों, उससे के साथ कनेक्ट करके बताएंगे, तो बच्चा जल्दी अंडरस्टैंड करेगा, रैदर देन सिर्फ उसको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिज्म की तरफ प्रमोट करने के बजाय, रियल लाइफ एग्जाम्पल, थ्रू दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू कनेक्ट। और धीरे धीरे जब वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर तो एक बात होती है ना कि एक रेपो बन गई, फिर आप उसमें कुछ भी भर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके लिए फिर आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज अ पेरेंट, एज अ मदर। एंड यू नो वो आपकी बात भी सुनेंगे, क्योंकि हम कल से यही सुन रहे हैं एक दो दिन से कि बच्चे बात नहीं सुनते। बच्चे बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि किसी मोमेंट पे आपने उनकी बात नहीं सुनी होगी और उन्होंने यही सीखा कि बच्चे मम्मी और पापा तो मेरी बात नहीं सुनते, तो बात ना सुनना शायद एक नॉर्म है, तो मैं भी बात नहीं सुनूंगा। तो चेंज हमें बच्चों में तब लाएंगे जब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ चेंज करेंगे, एंड वी हैव टू बी अ रोल मॉडल, क्योंकि आजकल के बच्चे ना सिर्फ थ्योरीज से आपके काबू नहीं आएंगे, उनको एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक लाइव एग्जाम्पल चाहिए। यू हैव टू बी द लाइव एग्जाम्पल फॉर देम, कि आप वो चीजें अपने लाइफ में प्रीच नहीं करते, सिर्फ प्रैक्टिस भी करते हैं। और वो प्रैक्टिस करने की आप में भी क्षमता तभी आएगी जब आप अपने आप को रिचार्ज मोड में रखेंगे हमेशा। एक रिचार्ज मोड में रखने का सबसे सरल उपाय, सबसे सरल तरीका यही मैंने थ्रू अपनी MSCB सब सारी बुक्स पढ़ के भी यही देखा कि सब कुछ अमेलगमेशन उसका वहीं पे आके हो जाता है थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं डिवाइन एनर्जी से, हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं, छोटी छोटी बातें हमें प्रॉब्लम्स नहीं लगती, वो कब आती है और कब चली जाती है हमें पता भी नहीं लगता। इट गेट्स रिजॉल्व्ड ऑटोमेटिकली, दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ। ऑटोमेटिकली आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती चली जाएंगी, और शायद अभी आप उसको मिरेकल बोलना चाहे तो आप मिरेकल भी बोल सकते हैं। इट कम्स एज अ मिरेकल, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रिजॉल्व हो जाएगी, और वो कितने एट ईज से रिजॉल्व हो गई आपको पता भी नहीं लगा। तो ये सब चीजें अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल खुद बनेंगे बच्चों के लिए, तभी हम उनको प्रीच करने की सिचुएशन में हैं। नहीं तो आजकल बच्चे जब तक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आइदर दे फॉलो द CBSE पैटर्न और IB। IB में क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उससे आपको उसी से ही आप लर्न करते हैं। तो चिल्ड्रन दीज डेज आर इन दैट माइंडसेट दैट दे हैव टू सी फर्स्ट रादर देन ओनली लेक्चरिंग। लेक्चरिंग इन टूडेज जनरेशन डज नॉट वर्क एट ऑल। ये मेरा खुद का भी, अपने बच्चों के साथ भी है। आप उनको 10 बातें बता दीजिए, अगर आप खुद फॉलो नहीं करते दे विल कम टू यू। आप खुद, आपने तो ये बोला था, आप तो नहीं फॉलो कर रहे। दे ऑब्जर्व ईच एंड एवरी डिटेल, दे ऑब्जर्व ईच एंड एवरी एक्शन। सो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क बट इट इज नॉट अ इम्पॉसिबल टास्क। द इम्पॉसिबल वर्ड ऑल्सो से आई एम पॉसिबल। एंड सेकेंडली, मैंने जो ये आजकल ऑब्जर्व किया है बच्चों के कोपिंग मैकेनिज्म्स, बॉम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज एंड सब कुछ है बच्चों के पास, पर उसको यूज कैसे करना है कई बार उनको ये नहीं पता होता। एंड अपने आप से वो ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, तो दे गेट वेरी यू नो डिसहार्टेंड। बच्चों में हमें ये कोपिंग मैकेनिज्म्स, और एक पेरेंट की भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि माय चाइल्ड शुड एक्सेल इन एवरीथिंग। इफ इट इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड वेल एंड गुड, बट नॉट एवरी चाइल्ड इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। आपको आपका बच्चा जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए, उसकी कंपैरिजन मत कीजिए कि फलाना कर दे तो इतना कर लिया तुम नहीं कर पाए। बिकॉज लाइक वी यू नो, अब तो हमें समझ आ गया, दे आर ऑल्सो अ सोल, एवरी सोल हैज अ जर्नी। उनके भी कुछ अपने पीछे कर्म होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो वो मेंटली डील कर रहे हैं। तो आप उनको एज इट इज छोड़ दीजिए कि हाँ हमने उनको बता दिया है, हमने उनको मोटिवेट कर दिया है, अब लेट देम मेक मिस्टेक्स, लेट देम फॉल, बिकॉज यू आर देयर टू पिक देम अप। इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस कि इवन इफ यू फॉल, द मदर, द फादर, द पेरेंट्स, द फैमिली इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम नो मैटर वॉट। बिकॉज फेलियर्स कई बार हमें वो सीख दे के जाता है जो हमें सक्सेस नहीं सिखा सकता। दैट इज वाई सक्सेस इज अ वेरी लाउजी टीचर। फेलियर टीचर्स अस मेनी थिंग्स, द लाइफ लेसन्स। क्योंकि जब इंसान गिर के संभलता है, फिर गिर के संभलता है, तो वो अपनी ही लर्निंग से, गिरना संभलने से जो चीजें सीखता है वो किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, वो उसका एक्सपीरियंस है। और वो जब विद इन आपके दिल से जो एफर्ट निकलता है, दिल से जो आपकी सीख आपके एक्शंस में बाहर आती है, वो आपको सक्सेस की तरफ ऑटोमेटिकली लेके जाती है। तो उसके लिए, सक्सेस के लिए आपको फिर ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो दीज आर द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल एंड शेयर माई एक्सपीरियंसिस विद यू ऑल। मैं अंत में एक कविता जो हरिवंश राय बच्चन जी की है वो कहना चाहूंगी आपसे। बेसिकली तो ये मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और मेरे को ये लाइन्स काफी इंस्पायर करती हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कभी कमी रह गई देखो और सुधार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।
बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो बहुत आवश्यक हैं बच्चों के लिए, आपने बहुत डिटेल में अपने अनुभव से भी और समझ से भी बताए, तो सभी ने बहुत ध्यान दिया है। और कुछ रह गया है? बहुत कुछ मुझे लगता है हेल्थ से रिलेटेड। हाँ जी, हाँ प्लीज आप आ सकते हैं, जो भी आना चाहे, यू ऑल आर वेलकम। यस, हाँ एक आप आ जाएं, फिर उसके बाद दूसरे को हम खड़ा कर लेते हैं, सो दैट ज्यादा को हम कंप्रोमाइज कर पाएंगे। यस,
थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। देर आर टू थ्री पॉइंट जो निचोड़ हैं एज ए पार्टिसिपेंट फॉर द लास्ट टू थ्री डेज, एज माई एजुकेशन इन द फील्ड, एज ए टीचिंग प्रोफेशनल एंड एज ए मदर, ये चार मुद्दों से जो मेरे अनुभव हैं, मैं उस पर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आप तक रखना चाहूंगी, अ वेरी क्विक एंड क्रिस्प वन। सबसे पहले तो जो चिल्ड्रन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है, तो एक रिक्वेस्ट सबमिशन है, जो प्रॉब्लम शब्द है इसका अगर हम अर्थ देखें तो क्या कहता है, मसला, मुद्दा जिसका समाधान कठिन है। तो अगर हम अपनी थॉट्स को इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशनल एक्सपीरियंसेस, एनवायरमेंट सिचुएशन, अगर हम उससे देखने की कोशिश करेंगे तो शायद हम सॉल्यूशंस तक भी पहुंच पाएंगे। तो एक मुद्दा मुझे ये कहना है, और उसका भी रीजन क्या है कि बच्चों जिनकी हम बात कर रहे हैं ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है। आप भी अपने बचपन से यहां तक आई हैं, मैं भी अपने बचपन से यहां तक आई हूं। आपके बचपन को किसी और ने नर्चर किया, मेरे बचपन को किसी और ने नर्चर किया, जिनको हम नर्चर कर रहे हैं वो किसी और को नर्चर करें। ये एक हमारे मानव ह्यूमन विकास की, मानव विकास की एक अवस्था है। इट्स ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सो इट्स नॉट समथिंग दैट दे हैव सम स्पेशल प्रॉब्लम, इट इज द डेवलपमेंटल प्रॉब्लम सिचुएशन, एनवायरमेंटल सिचुएशन। और आज हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हर एक की सिचुएशन यूनिक है। हम दूसरे के उदाहरण से सिर्फ रिफ्लेक्ट करके, सिर्फ रिफ्लेक्ट करके अपनी सिचुएशन पे वो कैसे मैच करती है, एंड दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग। ये अपने आप से नहीं हो जाती है, और फिर वहां पर जिस बात की जरूरत आती है वो आती है पेरेंटिंग की। मैं कल दो दिन से सुन रही हूं ये वाली बात कि मां का रोल ज्यादा है, तो क्यों उस पर इतना भार डाल रहे हो भाई, औरत पे क्यों इतना भार डाल रहे हो, क्यों 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 उसकी गिल्ट को इतना बढ़ा रहे हो कि हर काम जो गलती हुई, अच्छा मेरे से गलती हुई, फिर वो वाली सोल अगर चार्ज्ड नहीं होएगी तो कहां से रिचार्ज करेगी। तो एक मुद्दा, इट्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंटल प्रोसेस में, पेरेंटिंग इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज टू बी इक्वली शेयर्ड बाय मदर, फादर एंड द फैमिली, एंड द फैमिली, जो हमें एक परिवार के रूप में, तभी वो परिवार की बात होती है। और परिवार का जरूरी नहीं कि वो हमारे खून का परिवार हो, खून का परिवार हो, क्योंकि विकास जो हम रूप लेते हैं, जो इंसान के व्यक्तित्व का जो रूप है, जो इंसान एक सिंगल सेल से जो वो इंसान बनता है, वो रिजल्ट है हमारे फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी का। तो हम किसी एक के ऊपर भार ना डाल के, ये नहीं कि उससे वो वाला काम, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन रहे हैं, बट एटलीस्ट गिव ए बैलेंस, शिव ए बैलेंस्ड परस्पेक्टिव दैट आई हैव डन माई बिट। मैम ने अभी अभी कहा कि हम उसे 100% वहां पर देते हैं जो मेरी केपेबिलिटी है। द केपेबिलिटीज, माई एबिलिटीज दैट वन पर्सन हैज, द अदर पर्सन is giving 100% of the abilities that the person possesses. कि वहां पर accept the differences, accept the differences and respect the differences. अगर हम इस मुद्दे से चलेंगे तो शायद वो हमारे सामने, हम उसे problem के रूप में देखेंगे ही नहीं, कि वो एक normal process of growing up है जो हम अपने environment है. We should not label it, we should not be judgmental कि बच्चा घर में तो अच्छा रहता है, ठीक ठाक behave करता है, जैसे hostel में चला गया वो drug addict हो गया. Why? एक ही दिन में क्या drug addict हो गया? आज ही सुबह अभी अभी जो बात कही है कि भी ये research कहती है कि जो हमारे early years होते हैं, early years of child like 0 है, जो बीज है, जो क्वालिटी ऑफ बीज है वो उसी समय ले कर दिया है हमने, बाद में तो वो कितनी खाद, एप्रोप्रिएट खाद उस नर्चरेंस में गई है, समाज के रूप में, दूसरे के रूप में, वो रूप लेता है. वो अचानक से डिसोबीडियंट नहीं हो गया है, वो शायद इंतजार कर रहा है, ये तो मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, मेरे को 12वीं करने तो दो, जाने तो दो, फिर मैं इन्हें दिखाता हूं. वो पर्पस, वो फिर हमारी पेरेंटिंग का है. इस पे बहुत गहन अध्ययन की, मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर जो काम हमें शुरू करना है वो उसके पैदा होने से पहले, तो उसको ला क्यों रहे हो, क्या उसके साथ करना है, वो वाली सोच के उसके बाद देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.
इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, प्लीज. मैं इसमें सिर्फ एक बात बहन जी ऐड करना चाहती हूँ कि प्लीज सिट डाउन, बी है. आई वांट टू ऐड वन थिंग ओनली कि यहाँ पर जब हम कहते हैं कि वुमेन्स को ये करना चाहिए, वुमेन्स को ये करना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिस इज अ वुमेन्स कॉन्फ्रेंस. तो जब वो हमारे सामने भाई आते हैं ना, हमको कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, और जब बच्चे आते हैं, प्लीज वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू एड हियर. सी, देखो क्या है कि अब हम, आप और हम दोनों यहाँ पर हैं, तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये कुछ ठीक करें, अब ये करेंगे कि नहीं करेंगे तो फाइनल नहीं है, है ना, लेकिन आई एम श्योर अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं करना चाहती हूँ तो आई मस्ट डू इट. मैं इनको सजेस्ट तो कर सकती हूँ, बट वेदर शी विल डू और नॉट, that is not certain. That's why, because women are before us, तो हम इसलिए उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने को हम चेंज कर सकते हैं, अपने को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने को हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा पार्टनर, माई सोसाइटी, माई फैमिली, हाउ मच दे विल कोऑपरेट विद अस, दैट इज आई कैन सजेस्ट एंड आई शुड सजेस्ट, आई विल गिव गुड वाइव्स टू देम, बट हाउ दे विल बिहेव आई एम नॉट श्योर. तो इसलिए वी आर स्पीकिंग फॉर आर सेल्स कि हमें अपने आप को करना है, हमें अपने को चेंज करना है, अपने को स्ट्रेंथन करना है. प्लीज
एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी. व्हेन आई वाज टीचिंग, तो पीटीएम जब होती थी तो मैं यूजली देखती थी सिर्फ मदर्स आई हैं. तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला, बेटा पीटीएम लिखा था, मदर्स टीचर्स मीटिंग नहीं लिखा था, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग मिला था, तो पेरेंट्स तो दो होते हैं ना, तो आपके पापा कहाँ हैं? तो रादर मैंने, आई वॉज अ क्लास 12 टीचर, आई कॉल्ड अप द फादर्स टू जस्ट टू चेक बैक कि आप ऐसे ही नहीं आए, क्योंकि एक नॉर्म बन गया सोसाइटी में कि पीटीएम में तो सिर्फ मदर्स जाएंगी. अगर आप जेन्युइनली बिजी हैं तो आप मुझे बताइए, पर अगर आप सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि सिर्फ मदर्स आएंगी, तो प्लीज मैं आपके बच्चे का मीटिंग ही नहीं लूंगी अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे. तो नेक्स्ट पीटीएम आई सॉ मेनी फादर्स वॉकिंग अप टू मी एंड टेलिंग मी, बिकॉज मैंने उनको पर्सनली कॉल करके बोला कि आप क्यों नहीं आए, आप अगर जनरली बिजी थे आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, कभी कभी होता है, बिकॉज आई नो कि जब मेरे हस्बैंड नहीं अवेलेबल होते तो मुझे ही जाना पड़ेगा, बट आई मेड श्योर कि फादर्स ऑल्सो कम टू द मीटिंग, दे डिस्कस वॉट देयर थॉट्स आर फॉर द चाइल्ड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मदर्स अभी हम बोलते जा रहे हैं और थोड़ा बहुत तो देखिए वेरिएशन तो है ही है, उसको हम नहीं डिफाई कर सकते, बट जहां पे उनका रोल है दे शुड प्ले देयर रोल एंड वी हैव टू इंश्योर दे ऑल्सो प्ले देयर रोल्स.
मेरा नाम शालू दुग्गल है और मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूं. जो हमारा रोल रहता है वो है मैम, जो फैमिली कोर्ट्स में डायवोर्स के केसेस आते हैं उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, वो 6 महीने के टाइम पे हम लोगों को रोल दिया जाता है कि फैमिली को,
यू आर फ्रॉम दिल्ली,
हम लोगों को वो रोल दिया जाता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर उस फैमिलीज को किसी भी तरीके से टूटने से बचाएं। हमें हस्बैंड वाइफ से भी की भी काउंसलिंग करनी होती है, फैमिलीज की भी काउंसलिंग करनी होती है और साथ में बच्चों की भी काउंसलिंग करनी होती है। जो हम फेस करते हैं, देखिए मैं अपने परिवार में बहुत ब्लेस्ड हूं, बाबा की बहुत कृपा है कि मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ के साथ हम रहते हैं और उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से,
वेरी गुड, वी कैन क्लैप फॉर हर। अदरवाइज ज्यादातर हमारे परिवार जब बढ़ने लगते हैं तो बहुएं इस तरह से कहती है, मेरी सास मेरे साथ रहती है ना, शी सेड कि हम उनके मदर फादर के साथ रहते हैं, वेरी गुड, वी कैन क्लैप।
तो उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार मेरे बच्चों को दिए हैं, मुझे अपने बच्चों की तरफ से कभी भी किसी तरह की कोई शिकायत अगर मुझे मिलती है तो मैं मम्मी को जाकर बोलती हूँ कि मम्मी ये शिकायत आई है आप देख लीजिएगा, वो अपने हिसाब से बच्चों को हैंडल कर लेती हैं। लेकिन जो बाहर मैं देखती हूँ, जो मेरी लाइन है, उसमें जब मैं देखती हूँ कि परिवार जो टूट रहे हैं उसका सबसे मुख्य कारण जो है वो है अहम, ईगो। मैं भी जो हमने अभी एक लेटेस्ट यहां आने से पहले एक काउंसलिंग क्लास थी मेरी, वहां पे आप टॉपिक सुनेंगे, आप रीजन सुनेंगे, आप हंसेंगे। मैं और ये दोनों 7 बजे घर में आते हैं, ये मुझे चाय बनाने के लिए बोलते हैं, ये रीजन। इस रीजन से लड़ाई हुई, बढ़ते बढ़ते हस्बैंड ने वाइफ पर हाथ छोड़ दिया। 100 नंबर पे वाइफ ने कॉल किया, पुलिस आ गई। जब पुलिस आती है फैमिली इन्वॉल्व होती है बाहर, मतलब एक चीज देखकर मैं इतनी हैरान थी कि उस मदर की जो मदर है, मतलब जो वाइफ है उसकी जो मदर है, उसका एटीट्यूड देखकर मैं इतनी हैरान थी। वो अपने दामाद का कॉलर भी पकड़ रही हैं, वो हिला भी रही, तूने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया। मैंने उनसे पूछा कि एक चाय बनाने की बात से बात शुरू हुई और यहां तक पहुंच गई, आप बोल देते कि 10 मिनट बाद बना दूंगी, या बोल देते मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं बना रही, बाद में बना दूंगी, क्या ऐसी कन्वर्सेशन हुई। तो हस्बैंड ने बोला, मेरे आज ऑफिस में बॉस ने मुझे बहुत कुछ सुनाया था, मैं गुस्से में था। वाइफ बोली कि मेरी जगह किसी और का प्रमोशन हो गया, इस वजह से मैं डिस्टर्ब थी। दोनों का इतना ज्यादा बुरा हाल। मैंने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं, कहते हैं जी 2 बच्चे हैं। मैंने कहा कहां रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। मैंने कहा आप तो अपनी जिम्मेदारियां पहले ही छोड़ के बैठे हो, तो एक चाय बनाने की जिम्मेदारी के लिए आप दोनों लड़ रहे हो आपस में। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि सुन के इतनी हैरानी होती है। देखिए क्योंकि मैं सरकार से जुड़ी हुई हूं तो हमें 3 ही सेशन की परमिशन दी जाती है, 4th सेशन हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम पर्सनली कोशिश करते हैं कि उनसे कनेक्ट रहें। 3 सेशन में हमें कोशिश करनी होती है कि उस परिवार को किसी तरीके से बचा लें, लेकिन ठीक है, ये हमारी जॉब है। लेकिन मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया जब मैं बाबा से जुड़ी, वो था कोरोना काल। कोरोना काल में हमें उन बच्चों की काउंसलिंग की जिम्मेदारी दी गई जिनके पेरेंट्स की डेथ कोरोना की वजह से हो गई, या तो मदर की डेथ हो गई या फादर की हो गई या दोनों की हो गई। उस दौरान मैंने ये बहुत अंदर से महसूस किया कि जिनकी मदर है उन बच्चों की काउंसलिंग आसान थी, लेकिन जिनके फादर हैं और मदर की डेथ हो गई है, 3-3 दिन तक उन बच्चों ने हमसे बात नहीं की थी। हमने उनको इतना पुश किया कि आप हमसे बात करो, आप हमें बताओ, पर बच्चों ने हमसे बात नहीं की। मतलब वो एक था कि मैं खुद डिप्रेशन फील कर रही थी कि मैं क्या बच्चों को बोलूं कि वो मेरे से कम अपनी बात शेयर करें। बहुत मुश्किल हुआ जिनकी मदर की डेथ हुई। तो जो सीख रहे हैं हम यहां से कि मदर का रोल सबसे ज्यादा होता है, वो आप बच्चे से पूछिए कि कितना ज्यादा होता है। आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, देखिए छोटे परिवार होते जा रहे हैं, एक एक बच्चे, एक ही बच्चा करना है जी, दूसरे का तो हम उठा नहीं पाएंगे, हम फाइनेंशियली इतना बच्चों को कर नहीं पाएंगे, आपको पता है एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, ये बातें करते हैं पेरेंट्स हमसे। यहां तक कि मूवीज में तो ये दिखाते हैं ना कि बच्चों की कस्टडी लेने के लिए लड़ रहे हैं, यहां देने के लिए लड़ते हैं कि तुम ही रखो, हमें फ्रीडम चाहिए। ये सोसाइटी आज की तरफ जो बढ़ रही है ना, ये बहुत खतरनाक है। मैंने जब डिप्रेशन फील किया कोरोना के दौरान, क्योंकि उस टाइम पे फैमिली काउंसलिंग, हमारे कोर्ट्स बंद हो गए थे, तो हमें बच्चों की जब काउंसलिंग करनी पड़ी, मैंने एक तरह से हथियार डाल दिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे उस बच्चे को बोलूं कि आपकी मम्मी भी नहीं रही, आपके फादर भी नहीं रहे, आप खुश रहो, मैं कैसे करूं उनको। तब मैंने, पवित्रा दीदी यहां पर हैं, मैंने इनसे भी संपर्क किया, हमारे A3 का सेंटर है पश्चिम बिहार का, मैंने उनसे संपर्क किया। बाई चांस ऐसा हुआ, मेरा सौभाग्य था, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मुझे शिवरात्रि के फंक्शन में ब्रह्म कुमारी जाने का अवसर मिला। वहां से जो मैं ज्ञान लेकर आई, मैं 3 महीने मैंने कोई काउंसलिंग नहीं की, क्योंकि मैं खुद फील कर रही थी कि मैं उन बच्चों को नहीं देख सकती। मैं, क्योंकि किसी लड़के में मुझे मेरा बेटा नजर आ रहा था, किसी लड़की में मुझे मेरी बेटी नजर आ रही थी। जब बच्चे बात नहीं करते थे तो मुझे लग रहा था अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चा भी ऐसे ही हो, तो मैं बहुत घबरा गई। फिर बाबा के संपर्क में आए, शिवरात्रि के फंक्शन में मुझे इनवाइट किया गया, मैं गई वहां, मैंने सिर्फ सुना और मुझे ये लगा कि हाँ, ये एक रास्ता ऐसा है कि आप अपने अंदर के शोर को शांत करके किसी और को रोशनी दे सकते हैं। फिर मैंने दोबारा काउंसलिंग स्टार्ट की और दोबारा बच्चों के कांटेक्ट में आई। फिर हमने उनको तरह तरह की चीजों से, नए नए एक्टिविटीज से उनको खुश रखने की कोशिश की। ठीक है, अब जो उनके साथ हुआ वो तो ईश्वर ने पहले से लिखा हुआ था, अपने अपने कर्म है, लेकिन बाबा की शक्ति इतनी मुझे मिली कि मेरे जीवन का नजरिया बदल गया। मैं रेगुलर सेंटर नहीं जा सकती क्योंकि अपनी इतनी हमारा टाइट शेड्यूल रहता है, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है मुरली सुनने का या जो भी प्रवचन हम ग्रुप में है आता है उसे सुनने का, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। एक लाइन बाबा के लिए बोलूंगी, मुझ पे ये रंग प्रेम का बाबा तुमने चढ़ाया है, सच कहूं जीने का मजा ही अब आया है, सच कहूं जीने का मजा ही अब आया है। ओम शांति।
अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया, पर मैं सोच रही हूँ आपने बहुत अच्छे अनुभव सुनाए और भी जो सुनाना चाहते हैं जरूर सुनाने के लिए विशेष ये वर्कशॉप रखा गया है, परंतु अगर हम अपना जो सब्जेक्ट है उस पर, क्योंकि बैकग्राउंड में जरूर कुछ थोड़ा बहुत बताना भी पड़ता है, बताइए जरूर, पर सब्जेक्ट पर हम थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा।
ओम शांति दीदी। मैं वडोदरा से आई हूँ और बिहेवियरल काउंसलिंग में डील करती हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मैं मानती हूँ अवेयर है और अपने बच्चों के साथ बहुत ट्यूनिंग रखते हैं। मैं ग्रामीण विस्तार में काम करती हूँ और वहाँ पर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पे अभी एक्टिवली काफी एनजीओस के साथ जुड़ के काम करती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक भी ग्रामीण विस्तारों में यहाँ पर जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, सोशल वर्क में है, मेरा बस निवेदन है यहाँ से कि ग्रामीण विस्तारों तक जाइए। शहरों में बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण विस्तारों में तकलीफ है। बच्चियां अभी भी ये नहीं जानती कि उन्हें मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्या चीज होती है, ये क्यों आता है, बस बोल दिया आता है। कई बच्चियां ये जवाब तक नहीं दे पाती कि इसके आने का कारण क्या है, ये तकलीफें क्यों होती है, आहार किस तरह का होना चाहिए, घर में व्यवहार किस तरह से उनके साथ होना चाहिए। सभी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल जब MC में बच्चियां बैठती हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनको फैमिली की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। उनको अंडरस्टैंड करना, उनका ध्यान रखना, उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, तो अपने प्रति आकर्षण, दूसरे के प्रति आकर्षण उनको जो डेवलप होता है, पेरेंट्स ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और बच्चे ये सारी प्रॉब्लम्स, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। वो क्यों इस समय पे कहीं इन्फेक्चुएशन फील कर रहे हैं, उनके बॉडी में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, उनके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं और उनको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, हाइजीन कैसे रखना चाहिए। बहुत सारी जगह हम लोग जो यहाँ बैठे हैं हमारे बच्चों को बहुत सारी चीजें पता है, मैं ऐसा मानती हूँ, बट बहुत जरूरत है इन बातों, इन टॉपिक्स पे बात करने की। कल जब रेणु दीदी बोल रहे थे रेड डॉट, उन्होंने जैसे ही बोला वो रेड डॉट तुरंत मेरे ध्यान में आया, क्योंकि मैं उस पर काम कर रही हूँ और इस रेड डॉट पे ग्रामीण विस्तारों में बेटियों के साथ काम करने की, और जो पेरेंटिंग अभी दीदी ने बात करी, पेरेंटिंग की बहुत जरूरत है। हम बच्चे बच्चे बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन घर में पेरेंटिंग, और खास करके दोबारा मैं वही बात करूंगी, मदर, क्योंकि मदर यानि मौसी, चाची, मामी, काकी, दादी, नानी में हम जब मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन लेते हैं तो वहां पर बैठे हुए 70 साल की लेडीज को भी हम उसमें बिठाते हैं। तो क्यों कि इसलिए नहीं, उनके तो मेंस्ट्रुअल वो तो अब छूट चुके हैं उन सब चीजों से, मेनोपॉज भी हो चुका है, लेकिन उनसे यही निवेदन करते हैं कि अभी भी आपके इर्द गिर्द कितनी सारी बच्चियां हम सब तक नहीं पहुंच पाते, मैं आप तक पहुंच रही हूं, प्लीज आप उन तक पहुंचिए। तो इस चीज के बारे में मेरा निवेदन है। और बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज वहीं से डेवलप हो जाती हैं, माँ या परिवार जन जब अपनी बच्ची के इन चेंजेस को नहीं समझता तो वो बच्चियां इसीलिए वो किसी भी रिक्शा वाले के साथ, सब्जी वाले के साथ भागने को तैयार हैं। घर में ये डेवलपमेंट स्टेज में उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता उनके हार्मोनल चेंजेस को और उनको ये समझाता नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट अदर देन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, हम जो लोग बहुत ज्ञान रखते हैं, समझते हैं चीजों को, राइट एंड रॉन्ग समझते हैं, कई बारी पेरेंट्स दे फेल टू टॉक टू देयर चिल्ड्रन कि आपको ये क्यों करना है। आपको रोज माला करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, ये अच्छी आदत है, आपको ये फॉलो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी इफेक्ट क्या है आपकी लाइफ में, आपको कैसे जरूरत पड़ेगी, और क्यों करना चाहिए भी छोड़ो बेटा, ये जब मैंने नहीं किया था, नहीं हम मुझे 40वें साल में मुझे जागृतता महसूस हुई थी, 40 साल तक धक्के खाए, बहुत साल बाद मुझे समझ में आया कि मैं जीवन में क्या गलत कर रही हूं, क्योंकि गाइडेंस जब नहीं मिलती है तो बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं कि मेरे ये इमोशंस क्यों डेवलप हो रहे हैं, क्यों मेरे नेगेटिविटी अगर कोई चीज होती है तो क्यों हिट कर रही है। अगर हम बच्चों को इन चीजों के बारे में अवगत करवाएं, उनसे बात जो इन्होंने भी प्रीति जी ने भी शेयर किया कि 15 मिनट दिन के ऐसे कोई भी परिवारजन नहीं है कि जो नहीं निकाल सकते, सिर्फ डेडिकेटेड होने की जरूरत है कि हम उनके साथ वही बात करें। 23 साल का मेरा बेटा है, फिर भी मेरा एक पॉइंट है, दिन भर मैं भी बिजी रहती हूं, पर चाय अगर पीनी है सुबह को तो 10-15 मिनट 20 मिनट इंटरेक्ट करना है मुझसे, शायद उसको बहुत ज्यादा पता है, बेटा है, बड़ा है, टीनेजर है, गूगल बाबा का आशीर्वाद, हमारे पास तो बाबा का आशीर्वाद है, उनके पास गूगल बाबा का आशीर्वाद है, बहुत सारी चीजें वो जानते हैं। बच्चों से कई बार इंटरेक्ट करके हम एजुकेट होते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों के साथ बैठना जरूरी है। और जब हम बात करते रहते तो हर छोटी बड़ी बात, जैसे उन्होंने कहा कि छोटी सी छोटी बात भी शेयर करते हैं, मैं शिविर में आई हूं, पूछता है मम्मी वो फ्रेंड घर में आने वाला है तो क्या करूं, मैंने कहा जवाब आप दे दो। इतनी छोटी सी बात भी बच्चा अगर शेयर करता है, 23 साल का बच्चा होके डिफेंस में जा रहा है, डिफेंस में उसका सिलेक्शन हुआ है, आर्मी में जा रहा है, और बच्चा हमसे शेयर करता है कि मम्मी वो आने वाले हैं तो ठीक है आप देख लो, ये ओपननेस, ये शेयरिंग बच्चों की होती है, हर बात हमसे करते हैं, उसका कारण है समय देना बच्चों को। तो ये दो चीजें मैं खास करके सबके ध्यान में कि रूरल एरियाज में बेटियों और परिवारों के साथ काम करना बहुत जरूरी है, ताकि मेंटल हेल्थ पे उन बच्चियों की हम उन्हीं समय पे टैप कर सके उन प्रॉब्लम्स को 13 से 19 साल के बीच में, और दूसरा हम अपने बच्चों के साथ उनको समय दें और ये करो वो करो हमारी वैल्यूज थोपने के बजाय। कल से हम जो पूरे दो दिन से ये चीजें शेयर कर रहे हैं, एल्बर्ट बेंड्यूरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग मॉडल थियरी जो बोलते हैं कि वॉट एवर वी मॉडल they are going to follow, whatever we do they are going to follow, हमें कई बारी कहने की भी जरूरत नहीं है कि आप ये करो। तो इन्हीं दो चीजों पे मुझे शेयर करना था, थैंक यू।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी 12:10 हुए हैं और 10 मिनट तक हम और शेयरिंग सुनेंगे, उसके बाद लास्ट में हम सम अप कर देंगे कि हमें क्या क्या करना है, लास्ट में एक लिस्ट बना लेंगे कि हमें क्या क्या करना है, सबकी बातों को कंसाइज करते हुए, राइट? नाउ यू कैन शेयर.
ओम शांति.
हाँ प्लीज, हाँ शॉर्ट, सो दैट वी कैन अकोमोडेट मोर पीपल.
ओम शांति. आज का जो टॉपिक है कि बच्चों की समस्या और उनका सोल्यूशन, सो आई विल कम टू द सोल्यूशन स्ट्रेट अवे. प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, इतनी सारी है. बींग अ मदर, बींग अ एजुकेटर, और मैं दिल्ली में वर्क कर रही हूँ एज अ मेंटोर टीचर, तो हम दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ एक अलग तरह का करिकुलम लेके आए हुए हैं जिसको हमें नाम दिया है हैप्पीनेस करिकुलम. अब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि अभी तक हम सब लोग जान चुके हैं बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी उनकी उनके डेवलपमेंट के स्टेजेस में प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको कभी कभी हम एज अ पेरेंट्स भी ओवरलुक कर देते हैं. बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हैं वो समझ नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों को उन सिचुएशन से रूबरू कराने के लिए और फिर उस सिचुएशन में उन्हें कैसे एक्ट करना है, इस बात की समझ उनमें डेवलप हो सके, उसके लिए एक खास तरह का करिकुलम बनाया गया है और उसको बहुत अच्छे से बहुत हैप्पीली लागू किया जाता है. जिसमें क्या है, कल भी शायद आपने सुना होगा, स्वस्तिका दीदी ने एक बात की थी, तो वो जिस हैप्पीनेस करिकुलम की बात कर रही थी वो दिल्ली के स्कूलों में 5 सालों से लागू हो चुका है. हमने उसमें छोटी छोटी स्टोरीज डेवलप की हैं, वो स्टोरीज बच्चों को सुनाई जाती हैं और उसके बाद उसमें कोई मॉरल नहीं है, उनसे कोई कंक्लूजन हम नहीं देते, बल्कि उन्हें उस सिचुएशन को फील करने का और ऐसा मौका दिया जाता है कि ये सिचुएशन आपके साथ हो रही हो तो आप कैसे एक्ट करेंगे. तो उसमें उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी चीजों को एनालाइज करने की पावर और उन चीजों को समझने की पावर सब डेवलप होती है और जो वो सोल्यूशन निकालते हैं उसमें से वो उनका खुद का डिराइव्ड सोल्यूशन होता है, कुछ ऊपर से प्रीच किया हुआ नहीं होता. तो आप और हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमारा एक मॉरल एजुकेशन का पीरियड हुआ करता था जिसमें कि हम एक स्टोरी जब सुनते थे हम कहते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, यानी कि वो मॉरल वो होता था जो राइटर ने लिखा है या जो एक इम्प्लाइड मीनिंग है. और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बच्चे जब उस सिचुएशन में है हर एक का मतलब, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, हर एक का कंक्लूजन अलग हो सकता है, हर एक की थॉट प्रोसीजर अलग हो सकती है. तो बच्चे को हम इतनी फ्रीडम देते हैं कि वो इससे अपना सोल्यूशन खुद डिराइव करे. और जैसे कि मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देती हूँ. दो बच्चे हैं घर में, एक दीदी और एक उसका छोटा भाई. वो आपस में खेल रहे हैं, खेलते खेलते उनको भूख लगी, देखा उन्होंने तो सिर्फ 2 सेब पड़े थे. छोटे भाई ने कहा मुझे भूख लगी है मैं सेब खाऊंगा. तो वो बहन एक्सपेक्ट कर रही थी, जो उसका ख्याल रखती थी सारा दिन, कि वो एक सेब खुद लेगा एक मुझे देगा, यही हम बच्चों को सिखाते हैं. तो उस छोटे भाई ने पहला सेब उठाया, उसमें से एक बाइट ली और तुरंत उसने दूसरा सेब भी उठा लिया और उसमें से भी एक बाइट ली. तो उसकी बहन को बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि मैं तो सारा दिन भाई का ख्याल रखती हूँ, इसने मेरा ख्याल नहीं रखा. तो जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आ रही थी, वो बोलने वाली थी, उसके भाई ने एक सेब अपनी बहन की तरफ बढ़ाया और कहा दीदी आप ये वाला सेब खाओ ये ज्यादा मीठा है. तो ये हमारी बुक में एक स्टोरी है. अब उसके बाद बच्चों के लिए रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस है कि आप अगर दीदी होते आपके दिमाग में क्या बात आती, आप अगर वो छोटा भाई होते आप कैसे रिएक्ट करते. और जब ये बात आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली अब आपकी क्या फीलिंग है, आपको क्या लग रहा है, वो बच्चा कैसा है, क्या उसने क्या किया, तो ये किया तो क्यों किया, क्या आप भी ऐसे ही करोगे कभी, या कभी आपने ऐसा किया है. तो ये सारे क्वेश्चंस हम बच्चों के लिए ओपन छोड़ते हैं जहां पर बच्चे अपनी समझ से अपनी रिफ्लेक्शंस देते हैं. तो यहाँ पे मॉरल एक हो सकता था, हमें आपस में परिवार में ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से बहुत अलग अलग मॉडल निकालते हैं इसके, बहुत अलग अलग सॉल्यूशंस निकालते हैं. तो इस तरह से जब हम एज अ एजुकेटर बच्चों के अंदर ये चीज शुरू से इंकल्केट कर देंगे, और ये जैसे कि कल भी बात हुई थी, हम सब जानते हैं कि जो बीज पड़ चुका है ना वो पड़ चुका है 5 या 7 साल की उम्र तक. आप बच्चों को जो संस्कार तब तक दे देते हैं वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहते हैं. उनमें थोड़ी एडिशंस होती जाती हैं नो डाउट, क्योंकि कुछ चीजें हमें ट्रेनिंग से आती हैं, कुछ चीजें हम डेवलप करते हैं, बट एक जो एक बीज है वो तो शुरू से पड़ जाता है. तो हमें ये कोशिश यही करनी है कि जितने हमारे छोटे बच्चे हैं जब तक वो हमारे साथ है, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक सर्कल टाइम हो, सर्कल टाइम विद इन द फैमिली जैसे दीप्ति ने बोला, और ऐसे ही सर्कल टाइम हम स्कूल में रखते हैं बच्चों के साथ. जब सुबह बच्चे आते हैं तो टीचर जमीन पर ही बैठकर, जहां बच्चे बैठे हैं सब एक एक प्लेटफॉर्म पे, ऐसा ना लगे कि टीचर एक पेडेस्टल पे है बच्चे नीचे हैं. एक साथ सर्कल टाइम में बैठते हैं और फिर इंटरैक्ट करते हैं, बेटा आज आपके घर में क्या हुआ। हर रोज 5 बच्चों के साथ इंटरैक्शन होता है। तो इस तरह करते करते हफ्ते में हर बच्चे की टर्न आ जाती है, जिसमें उसे पूछा जाता है कि आपके घर में सब लोग कैसे हैं, आपके परिवार में कैसे हैं, आज आपने क्या किया, कल जब आप गए थे तब आपकी मनस्थिति क्या थी। एंड वी ऑलवेज टेंड टू कीप अ चार्ट इन द क्लास, जिसमें होता है हाउ डू आई फील टूडे, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। तो वहां पे कुछ इमोजीज बने होते हैं और बच्चा उस इमोजीज की तरफ इशारा करके कहता है आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड। कभी कभी कुछ सही नहीं होता, मैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हूं तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह मम्मी ने डांट के उठाया है और इतने में ही मम्मी पापा की लड़ाई हो गई है, एक जूता नहीं मिला, तो बच्चा ऐसे ही आ जाता है स्कूल बिना जूतों के आ जाता है। तो अगर पूछो ना कहां है, कहते एक ही जूता मिला था, दूसरा मिला ही नहीं, और मम्मी और पापा तो लड़ रहे थे, उन्हें टाइम नहीं था, तो मैं ऐसे ही आ गया स्कूल। और मिड डे मील भी स्कूल में इसीलिए मिलता है क्योंकि पेरेंट्स को खाने कमाने के लिए बाहर जाना है, उनके पास इतना भी समय नहीं होता कि बच्चों को खाना बना के दे पाएं। तो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील भी इसीलिए रखा जाता है कि बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाए। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं, ये सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दिए जा रहे हैं, बिकॉज बच्चों की पालना में चार मुख्य वो होते हैं, एक है परिवार, कम्युनिटी, स्कूल। ये सारे स्टेक होल्डर्स जब इकट्ठे मिलके आए तभी हम सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। तो खाली परिवार ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन भी उतनी इम्पोर्टेंट है, हम बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और वहां पर अगर हम इस तरह की बातें, इस तरह का ज्ञान उनके साथ साझा करें तो बच्चे जरूर मानते हैं। सिर्फ हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। जैसे एक चीज और हम लोग करते हैं, एक होता है माइंडफुल, FULL। व्हाट इज अ माइंडफुल? मींस आपका माइंड क्लस्टर्ड है। और दूसरी जो हम एक्सरसाइज कराते हैं दैट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मींस कि आप ड्रॉप डाउन एवरीथिंग, जो कुछ आपके पास है 2 मिनट के लिए शांत होके बैठिए। जैसे यहाँ पे भी हम लोग राजयोगा मेडिटेशन में करते हैं कि शांत होके बैठिए, अपने ध्यान को पहले बाहर की चीजों पर, फिर कमरे के अंदर की चीजों पर, आवाजों पर, और अल्टीमेटली अपनी सांस पर, अपने आप पर, और लास्ट में अपनी भ्रकुटी के बीच में केंद्रित कीजिए। और इसका इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा है बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन पावर, बच्चों का पढ़ाई में दिमाग लगना, इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से हुई है कि बच्चे जो भी चीज करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक्टिविटीज हो, उसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। और जब इन्वॉल्व रहते हैं तो लर्निंग बहुत बेहतर होती है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है इन चीजों से। सो दिस वाज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर। ऐसी अगर चीजें हम लोग अपने आप भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस में भी कर सकते हैं, तो मेन थिंग है स्टार्ट अर्ली विद द चाइल्ड। जितना समय जाता रहता है ना, फिर उन चीजों को प्रैक्टिस करने में, उन चीजों को हैबिट में लाने में उतना ही टाइम ज्यादा लगता है।
ओम शांति। मैं समझती हूँ कि अब हम इसको समअप कर लें। सुनने में तो अब काफी सभी बहुत लर्नेड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, सबके बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस। किसी का बहुत जरूरी है तो 1-2 लाइनों में अगर आप कहना चाहें, प्लीज बी शॉर्ट।
ओके मैम, थैंक यू मैम। ओम शांति। वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ था, पर क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और गांव में पढ़ाती हूँ, रूरल एरिया में बिल्कुल। और जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं वो हम ही जानते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होती, उनके सर में जुएं होती हैं। तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस मैं एक ही चीज वहां पे करती हूँ, बच्चों को अपने आप से जोड़ती हूँ। सबसे पहला काम यही करती हूँ कि बच्चे मुझसे सिर्फ जुड़े। एक बार अगर हमसे बच्चा जुड़ जाता है तो उसके लिए वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझता, उसके लिए दुनिया में सबसे बढ़ के हम होते हैं, हम टीचर हैं उसके। तो उसे ये लगता है बच्चे को, जो मेरा अपना अनुभव है मैम, कि मैंने उसको जो बोल दिया वो उसके लिए फाइनल। अगर मैंने बोला रात हो गई तो रात ही हो जाती है। तो शॉर्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर एक बार हमारा बच्चा हमसे जुड़ गया या हमारे स्कूल का बच्चा हमसे जुड़ गया, तो हम जो कंप्लेन करते हैं हमेशा, मैं कल से ये बार बार सुन रही हूँ और हमेशा सोसाइटी में भी सुनती हूँ कि बच्चों में ये चीज गड़बड़ हो रही है, बच्चों में ये चीज गड़बड़ हो रही है। मुझे हमेशा लगता है कि बच्चों में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आज की जो जनरेशन है मुझे लगता है हमसे ज्यादा स्मार्ट और समझदार है। बस हमें ये समझने की जरूरत है कि हम उन पर विश्वास कैसे करें।
सिर्फ विश्वास हम अपने, मेरी बेटी अमेरिका में है 2 साल से, 2.5 साल हो गए अब उसको गए हुए, मैंने उसको कभी महंगे कपड़े नहीं पहनाए, मैंने कभी उसके लिए खिलौने नहीं खरीदे, मैंने उसको हमेशा एक बात बोली है, मैं तुम्हें सिर्फ एजुकेशन में सपोर्ट करूंगी, एजुकेशन में उसके मैं एक टीचर हूँ, 80 लाख रुपए मैंने खर्च किया, लेकिन मैंने उसका वो सपना पूरा किया कि वो अमेरिका जाना चाहती है, वो अमेरिका में है। और अब मेरी बेटी मुझे हमेशा ये कहती कि मम्मी आपने मुझे कभी महंगी चीज नहीं दी, पर मुझे पंख दिए उड़ने के लिए। आज तक मैंने, क्योंकि गर्ल चाइल्ड है मैम, तो गर्ल चाइल्ड का एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है हमें, मैंने अपनी बेटी का कभी मोबाइल उठा के चेक नहीं किया, कभी मैंने जानने की कोशिश नहीं की। मुझसे उसने कहा मैं मम्मी उसके घर जा रही हूँ, मैंने उसकी फ्रेंड को कॉल करके कभी ये नहीं पूछा कि क्या वो आई। मैंने हमेशा अपने बच्चे से बोला जो तुमने कहा वही मेरे लिए सच है, क्योंकि मेरा बच्चा जिस दिन मुझसे झूठ बोलेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे खुद पता चल जाएगा। तो बींग ए मदर, बींग ए टीचर, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी होता है बच्चे पे, बच्चे से इमोशनली अटैच होना और बच्चे पे ट्रस्ट करना। हमेशा हम इसी सोच के साथ जीते कि हमारा बच्चा गलत है, ताक झांक हमेशा उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ये गलत है ये सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें थोड़ी सी फ्रीडम उसे भी दो, अपने आप उसे खेलने दो, कूदने दो। अपना बचपन हमें याद करना चाहिए, हम कितने फ्री थे, गलियों में घूमते थे। हमारा बच्चा घर में कमरे में बंद है, तो हमें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा बस दो बातों पे ध्यान रखना है। इमोशनली इतना जोड़ लो अपने बच्चे को कि वो हमसे कुछ भी छुपा ना सके, और दूसरा उसको सपोर्ट करना, वो क्या चाहता है लाइफ में, क्या करना चाहता है लाइफ में, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मेरी बेटी की जो अभी बताया मैंने, अमेरिका जाने का सपना था, मैंने उसको सपोर्ट किया, उसके लिए सफर मैं बनी होंगी, ख्वाहिशें मैंने मारी होंगी, लेकिन सपोर्ट मैंने उसको किया। तो तीसरी चीज ये कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट हमेशा करना चाहिए, उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा होगा। हम हमेशा अपने बच्चों को ध्यान देना, शक की नजर से देखते हैं, हमेशा शक करते हैं हम अपने बच्चों पे, हमें अपने बच्चों पे शक नहीं करना है। मैम ने भी बहुत अच्छी बात बताई थी कि बच्चे हमें, मैम की बात मुझे सबसे अच्छी लगी, बच्चे जब हम अपने बच्चों को ये कहते हैं, जैसे मैंने अपनी बेटी से हमेशा एक बात कही है, अगर तुमसे कभी कोई भूल हो जाए, अगर तुमसे कहीं कोई गलत हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि जिस दिन तुमसे कोई गलती हो गई, मैं ही वो इंसान हूं जो तुम्हारे सामने अड़के खड़ा हूंगा, पूरी दुनिया को मैं फेस कर लूंगी, लेकिन अपने बच्चे को इफेक्टिव नहीं होने दूंगी। बच्चे हमसे क्यों छुपाते हैं, क्योंकि उनके मन में डर है, पता नहीं क्या सोचेंगे। गलतियां सबसे हो सकती है, मैं हमेशा उसको बोला कि मैं वो इंसान हूं पूरी दुनिया में जो तुम्हारे सामने अड़के खड़ा हूंगा तुम्हारी गलती के साथ। तो बस यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच।
ओम शांति। अब हम सम अप कर लेते हैं अपनी पूरी वर्कशॉप को। इसमें इनके एक पहलू बिल्कुल ओपन नहीं हो पाया, हमने इमोशनल हेल्थ को तो बहुत टच किया, पर फिजिकल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सोचा। बच्चों की हेल्थ भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हम एक दो बातें इसमें जब हम सम अप करेंगे उसमें ले लेंगे। तो बच्चे को हमें बहुत शक्तिशाली बनाना है, बाहरी हेल्थ प्लस इनर हेल्थ दोनों को अच्छा बनाना है। तो कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें? दोनों चीजें, इनर हेल्थ प्लस आउटर हेल्थ, है ना, इनर एनर्जी एंड आउटर एनर्जी दोनों के लिए। जितना मेरे जीवन का अनुभव है, मैं भी बचपन से ही इस संस्था से जुड़ी हुई हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शुरुआत शुरू सुबह से ही होता है। जैसे हमारी जिंदगी बचपन से हम बड़े होते हैं, ऐसे ही जिंदगी का जो पहला कदम है वो है सवेरा। तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, वैसे तो जब जाग जाओ। एक बार एक कॉलेज में हम भी गए कुछ सुनाने के लिए, तो हमने पूछना शुरू किया, वो इंजीनियर्स का कॉलेज था, हमने पूछना शुरू किया बच्चे आप लोग कितने बजे उठते हैं, तो मैंने ऐसे बोला जो 5 बजे उससे पहले उठते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। उसके बाद मैंने कहा 6 बजे और उससे पहले, माना 5 बजे वाले भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, 7 बजे 8 बजे, आप कितना उम्मीद कर रहे हैं, मुझे कहां तक गिनती करनी पड़ी होगी, 2 बजे। इसीलिए वैसे तो जब जाग जाओ तभी सवेरा है, तो आज हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैं और मेरे बच्चों का सवेरा कितने बजे, क्योंकि वी वॉन्ट टू बिकम मॉडल्स। बहुत सारी जो बातें हुई उसमें ये निकला कल भी और आज भी कि हमें मॉडल बनना है, तो जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे करेंगे। तो आज हम लोग डिसाइड कर लें हमारा सवेरा कितने बजे होगा, कम से कम सबको ओके है हु से चार बजे नहीं सबके लिए नहीं, देखो ऐसा बनाएंगे सवेरा जो बाकी उसमें है ना, जैसे हम कहेंगे साढ़े चार से पहले वाले उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो ऐसा सवेरा बनाओ जो सबको सूट करे। 6 बजे 5 बजे अच्छा भाई ज्यादा आवाज जो है वो 5 बजे की आ रही है, तो वोट तो 5 बजे को ज्यादा मिल रहे हैं, तो 5 बजे कर लें। आप लोगों से पूछ के ही करना है, मैं अपना नहीं चलाऊंगी। 5 बजे जो समझते हाथ खड़ा कर लीजिए, 5 बजे और उसमें 4 बजे 3 बजे 2:30 बजे सब आ जाएगा। 5 बजे बहन जी 5 बजे नहीं चलेगा, तो हाथ खड़ा कीजिए। 5 बजे उससे पहले वाले सब आ जाएंगे इसके अंदर, भाई लिख लो लिखने वालों। हाँ
मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी बीबी, क्योंकि अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे डज नॉट स्टार्ट विद द डे इटसेल्फ, इट स्टार्ट्स अ नाइट बिफोर।
हाँ लेकिन वो वहां तक पहुंचेंगे ना शाम तक।
हाँ। क्योंकि अगर आप जल्दी सोएंगे नहीं तो आप जल्दी उठेंगे नहीं,
तो नाइट से शुरू करें।
हाँ जी, रात को जल्दी सो जाइए तो सुबह जल्दी आप खुली जाएगी।
तो हाँ प्लीज
ब्रह्म मुहूर्त,
मैंने सोचा यहीं से शुरू करके वहां तक पहुंचते हैं। चलो पहले नाइट कर लेते हैं, क्योंकि फिर उससे पहले ये भी आएगा ना खाना कितने बजे खाना है, इसलिए मैंने सोचा यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये हम कौन से फिजिकल हेल्थ और दिस विल हेल्प अस इन इनर हेल्थ ऑल्सो। ओके, तो हम सबका सवेरा कितने बजे होगा, 5 या 5 से पहले ठीक है। और 5 या 5 से पहले हम जैसे 4, 3:30 जो बाकी ब्रह्मा कुमारी बैठे हैं, तो पहला जो सवेरा शुरू होगा तो पहली नमस्ते, पहली राम राम, पहली गुड मॉर्निंग उस परमात्मा से। जो मैं करूंगी वो मेरे बच्चे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जब कर रहे होंगे तो बच्चे विल ऑब्जर्व एंड हम उनको सजेस्ट भी करेंगे, और जैसे उनको बताएंगे भी इससे हमें क्या क्या एनर्जी मिलती है, क्या क्या हमें इसके लाभ होते हैं, दैट वी टू शेयर विद आवर चिल्ड्रन। ओके ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है, हमें अच्छी तरह से सवेरे नहाना भी जरूरी है ना। समटाइम्स यू नो हम कभी कभी किसी को फोन करते हैं 10-11 बजे तो कहते हैं ठीक है दीदी अभी नहा कर आती हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसमें साथ साथ ऐड करते जाते हैं ये जो सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर हो चुका है, कौन सा, हाँ उसको हम सवेरे इसमें ऐड करते जाइए साथ। सवेरे जो है इसमें ऐड कर लेते हैं कितने बजे तक मोबाइल, कितने बजे तक टच नहीं करेंगे, जो आप लोग कहेंगे वही करने वाले हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वही कीजिएगा। 8 को वोट ज्यादा मिलेंगे मुझे पता है, उसके बाद बहुत सारे काम करने होते हैं। 8 बजे तक मोबाइल को भी टच नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ हम ऐड कर लेते हैं कि सवेरे से जब से हम उठते हैं, मैं भी और हमारा परिवार बच्चे जो भी हमारे साथ हैं, हम लोग आवाज में थोड़ा धीरे आए, आवाज में तो आना पड़ेगा पर आवाज में थोड़ा धीरे आएंगे, ये भी हमारी इनर हेल्थ और आउटर हेल्थ दोनों को मदद करेगा ना। सवेरे जो हमारी एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ये भी ऐड कर दीजिए कि सवेरे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोला। कल वो स्क्रिप्ट दिखाई थी, छोटी सी स्क्रिप्ट दिखाई थी, उसमें भी बताया गया था। हाँ ठीक है। उसके बाद हम भगवान के साथ गुड मॉर्निंग कर चुके हैं, और कोशिश करें कि हम क्योंकि कम धीरे बोलेंगे तो भगवान का साथ हम लेके चलेंगे, मन बुद्धि से भगवान का हम साथ लेके चलेंगे, जो भी हम काम कर रहे होंगे नहाना धोना, और प्लस उसके बाद जो भी हम घर की सेवा करते हैं भाई लोग भी और बहनें भी, अगर भाई सैर पे जाते हैं या बहनें सैर पे जाती हैं तो भी बिल्कुल शांति में जाएंगी। वैसे भी आपको पता है डॉक्टर लोग बताते हैं, यहाँ पर हैं कोई कोई डॉक्टर भी, अगर हम बहुत फास्ट वॉकिंग भी कर रहे हैं और फास्ट बातें भी कर रहे हैं तो उसके बाद वो जो हमारी वॉकिंग है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं रहती, हमें पता ही है। तो वी शुड ऑब्जर्व इट, क्योंकि बहुत सारे लोग जाया करते हैं, तो जाओ सैर करने जाओ, बच्चे भी अगर सैर करने जाते हैं तो उनको छुट्टी दीजिए। आजकल वो जो मोबाइल पर ही खेल चल रहे हैं उससे अच्छा है थोड़ा बाहर की एक्सरसाइज करें, वो जिम में जाने से ज्यादा अच्छा है एक्सरसाइज पर हम उन बच्चों का ध्यान खिंचवाएं, अपना भी पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो बच्चों का भी रखवाएंगे। अब उसके बाद नेचुरली हम कॉफी चाय नाश्ता बाहर जाने वाले हैं तो करेंगे, बहनों ने बनाया भाइयों ने कोशिश करेंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे। वीर जी तुसी भी ध्यान देना, हाँ ठीक है भाई, सब मिलकर करने से काम बहुत अच्छे होते हैं। नहीं रियली आई एम टेलिंग यू, आपको मजा आएगा। हमारे यहाँ भाई लोग करते हैं ना सेवा, हमारे आश्रम में भी जो भाई आते हैं हम उनको भी कहते हैं कि आप मिलकर करेंगे तो अच्छा है। छोटे छोटे कामों में मदद करने से काम हल्का भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है और मजा भी आता है। और जब आप सच करके देखिएगा, अगर मान लो मैंने आज ग्लास अपना साफ किया चाय पीने के बाद, आप देखना कितनी बार ध्यान जाएगा कितना साफ लग रहा है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। हाँ तो बड़ा अच्छा सा लगता है, मन को सुकून सा लगता है, कितना साफ लग रहा है ये, है ना। या चाय हम बनाते हैं तो लगता है कलर कितना अच्छा बना है चाय का, है ना। ये सब चीजें हमें खुशी प्रदान करती है, विच हेल्प इनर हेल्थ को भी और बाहर के दोनों की हेल्थ को हमें इम्प्रूव करने में मदद करती है। हम नाश्ता करने बैठेंगे तो याद करेंगे कि हम जो यहाँ पर जितनी बहनें बैठी हैं भाई बैठे हैं, हम अपने उस ब्रेकफास्ट का जल्दी से भोग बाबा को जरूर लगा कर आएंगे। जो जिस भी भगवान को या तो आप मानते हैं, जो मंदिर है आपका, एक छोटी सी प्लेट बना लीजिए, उसमें दो तीन डब्बी रख लीजिए, जो भी आपने बनाया है नाश्ता, चाहे वो सिर्फ रोटी और चाय ही है तो थोड़ा सा दूध रख लीजिए और एक परौंठी बना करके और एक छोटा सा रुमाल बनाकर, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली कौन है तो सबसे पहले तो बड़ों को ही खिलाना होता है। तो हम भगवान के पास ले जाएंगे, ज्यादा देर नहीं है तो एक मिनट खड़े होकर भी बाबा को कह दो मन से, बाबा आप जल्दी से खा लो फिर हम सब मिलके खाएंगे, ठीक है। फिर उस रोटी को साई रोटियों में रख दीजिएगा, जब आपके पास प्लेट आएगी तो आप प्लेट में, क्योंकि भोग तो हमने एज अ होल लगा दिया है, पर मेरे हिस्से का तो अभी आया है तो उसको जरूर भगवान को भोग लगाएंगे। जब बच्चे आपको ये करते हुए देखेंगे दे विल नेचुरली फॉलो इट, और ना करें तो मुंह से बता भी दीजिए, क्योंकि हमारे अपने बच्चे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीजें क्या करेंगी, बच्चे को एनर्जी देंगी। अब हमारा जो इनर हेल्थ है और हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, दोनों में यू विल फाइंड वेरी वेरी गुड इम्प्रूवमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। और इसके बाद अगर आप ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ चुके हैं तो हम आपसे ये जरूर उम्मीद करते हैं, हमारे यहाँ 3 दिन मेडिटेशन कोर्स होता है, 7 डेज इसका एनहांस कोर्स होता है, उसको आप जरूर अटेंड करेंगे। और उसके बाद हमारी रोज मुरली क्लास होती है, जो विशेष वर्शन्स हैं जो भगवान ने हमको सुनाए हैं। ऑफलाइन सुनना सबसे अच्छा है, एटलीस्ट ऑफ डेज पे तो आप जरूर जाएं, अगर आपको दूर है तो, पास है तो सवेरे और शाम दोनों टाइम होता है, आप जाकर के जरूर सुनिए। उससे बेहतर जो हमें एनर्जी लेवल है वो हमें और किसी के द्वारा नहीं मिल सकती, और उस वर्शन्स के अंदर जो दिन भर में हमारे सामने चैलेंजेस आती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो बोलना ही नहीं है, हम पहले भी नहीं बोलते थे, यहाँ पर तो सिर्फ आप लोग इसको समझ पाए इसलिए लिखा हुआ है, अदरवाइज भी से वो हमारी ऐसी हमारे एनर्जी देने वाली वो जो बातें हैं जो हमारी एनर्जी को यूज करती हैं। अब मान लो मेरे अंदर सहन शक्ति है तो वो जब बात आती है तो हम उस सहन शक्ति को यूज करते हैं और हमारी वो सहन शक्ति फिर हमें नजर भी आती है, डेवलप भी होती है। ये चीज ऐसी है जितनी यूज करते हैं उतनी डेवलप होती है। तो वो जो चैलेंजेस हमारे सामने आने वाली हैं उसको सॉल्यूशन उस मुरली के अंदर, उन वर्शन्स के अंदर जो 4 पेज की एक होती है, हम जो महावाक्य होते हैं उनको हम खुद भी पढ़ते हैं औरों को भी सुनाते हैं, तो उसको आप पढ़ेंगे। और यही इसी स्तर से बाकी दिन की दिनचर्या हम इस तरह से करेंगे, और अपने परिवार के साथ फैमिली के साथ एक टाइम जरूर, इधर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, शाम के समय पर इकट्ठे बैठ करके आप खाना खाएंगे। खाना खाते वक्त तो बात नहीं करेंगे, उसके बाद आप उनसे बातचीत करेंगे कि आज के दिन में क्या क्या हुआ। और उसमें वो वाली बात सदा ही हमारे इस आश्रम पर सिखाई जाती है कि कभी भी हमसे भूल हो तो हमें 2 तरीकों से उसका इजहार करना है। एक तो भगवान के पास जाकर के हमें अपनी गलती को बताना है, और दूसरा हमारे जो बड़े हैं मम्मी पापा उनको हमें वो गलती बतानी है। अगर पापा को बताने की हिम्मत नहीं है तो मम्मी को तो जरूर बतानी है, अपनी माँ के साथ जरूर शेयर करना है। जो बच्चे अपने माँ के बहुत करीब होते हैं, पर करीब आते हैं जैसी बातें निकल चुकी हैं, उनको हम करेंगे कि अपने बच्चों के साथ हम बहुत बहुत क्लोज रहेंगे और उनकी जो हेल्थ है उसको अच्छा रखने के लिए इट्स अ वेरी गुड सजेशन फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज एज वेल एज जो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्वीकार करेंगे कि अपने बच्चों को सदा वेजिटेरियन फूड ही प्रोवाइड करें। चाहे डॉक्टर आपको कहे इसको अंडा खिलाओ, पर आप मत खिलाना। उस अंडे के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास है। हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल कितने वर्षों से चल रहा है, हमारी दादियां न जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने झेला था, हमने देखा अपनी आंखों से, लेकिन उन्होंने कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। तो अपने बच्चों की अच्छी इमोशनल हेल्थ बनाने के लिए उनको जरूर आप वेजिटेरियन फूड ही सदा प्रोवाइड करेंगे और जब भगवान की याद इसमें समा गई है तो वो एक बहुत शक्तिशाली भोजन बन जाता है। और लास्ट बात एक जरूर मैं इसमें बताऊंगी कि बच्चों की हर बात को मानना कोई जरूरी नहीं है। उनकी जो जायज बातें हैं, रादर कभी कभी शुरू शुरू में जब बच्चा डेवलपिंग स्टेज पर है तो अगर आप उनकी बात मान भी सकते हैं तो एक बार ना मानिए। मैं रियल अपना अनुभव बता रही हूं कि कुछ टाइम मैंने भी जॉब किया था तो हमारा एक हम उम्र भाई था, उसका अभी अभी बेटा पैदा हुआ था और शायद 3 साल का हुआ होगा, तो उसने कहा कि अंसिया बहन आज मैं बेटे को बाजार में लेके गया तो उसने ना मेरे से कोका कोला पीने के लिए कहा। मैंने उसको नहीं पिलाई। मैंने कहा क्यों भैया, ऐसे क्यों किया? कहते हैं अगर मैं उसको पिला दूंगा तो फिर वो हर बार डिमांड करेगा। देखिए आज मैं पिला सकता था, मैंने नहीं पिलाया ताकि उसको पता लगे कि कुछ चीजें मेरी मना भी होती हैं। अगर शुरू में हम सदा बच्चों को, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, आप सब बहुत अच्छे वेल ऑफ फैमिलीज के हैं, जो बातें हमें जिंदगी में नहीं मिली हमें लगता है अपने बच्चों को हम सब कुछ दे दें, सब कुछ दे दें, कैसे भी करके दे दें। इससे क्या होता है, वो बच्चे बस पाना ही पाना जानते हैं। सहन शक्ति ना तो उन्होंने सुना ही नहीं है क्योंकि पैसे तो हम लोग सब डबल डबल वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्क कर रहे हैं और कहीं तो सास ससुर भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनको सब चीजें प्रोवाइड करते रहते हैं और इसलिए उनको आदत ही नहीं होती किसी बात को सहन करने की। और यही कारण है कि बच्चे बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन पाकर बहुत अच्छे वेल प्लेस्ड हो जाते हैं परंतु उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, ना सुनने की आदत नहीं है। इसलिए वो बच्चे जो आजकल सेपरेशन हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, ये उसका कारण यही है। तो बच्चों को ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए कि ये चीज हमको नहीं मिलेगी। उनकी जो आंतरिक शक्ति है उसमें सहन शक्ति, समझने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब शक्तियां डेवलप करना भी हमारा फर्ज है। सिर्फ चीजें प्रोवाइड करना कोई जरूरी नहीं है। और एक बात जो बीच में निकल चुकी है, हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने ऐसी हमारी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। उसके कैलिबर को देखते हुए, उसकी जितना भी बौद्धिक विकास है, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को देखते हुए हम उसको सजेस्ट करें। कल एक बात निकल रही थी, शायद बहन जी बोल रहे थे कि वो बच्चे का दिल था कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूं, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चे कई बार वो जो एक्टर्स को देखते रहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की बातें सुनते रहते हैं तो सोचते हम ये बन जाएं, परंतु कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें जब तक एक्सेल ना कर लो तब तक आप कुछ पा नहीं सकते। लेकिन पढ़ाई के मामले में जितना आप करोगे उतना तो मिल जाएगा। चलो आप आईएएस ऑफिसर नहीं बने तो सेक्शन ऑफिसर सही, सेक्शन ऑफिसर नहीं तो असिस्टेंट सही, असिस्टेंट नहीं तो एलडीसी यूडीसी तो बनी जाओगे, है ना। लेकिन आप स्पोर्ट्स में या उसमें जाएंगे उसमें तो पता नहीं आप इतना एक्सेल कर पाओ कि ना पाओ, फिर कुछ भी नहीं कर पाते, ये भी कारण होता है। तो इसलिए उसके कैलिबर को देखते हुए बच्चों के करियर के ऊपर हमें उनको फोकस करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, लेकिन थोपना नहीं चाहिए। बात 100% फाइनल है कि बच्चों के करियर के लिए उनकी हमें भावनाएं सुननी चाहिए, सुनने के बाद उनको प्यार से बैठकर पेसिफाई करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा फील्ड ज्यादा अच्छा होगा। उसमें उनका जिस जिनके ऊपर उनका फेथ हो, कई बार हमसे ज्यादा मामा पर, चाचा पर या किसी पर उनका विश्वास होता है, हम उनके साथ उनका इंटरेक्शन करा के उनको किसी तरह से पैसिफाई कर दें कि ये वाली लाइन आपके लिए अच्छी है। इस तरह से हम जब बच्चों के साथ इस तरह से डील करते रहेंगे, बहुत अच्छी तरह से उनकी बातों को समझ करके और सॉल्यूशन देते रहेंगे, तो जरूर हमारा आज का बालक कल का बहुत अच्छा नेता बनेगा, बहुत अच्छा हमारा समाज, जो हमारी उम्मीद है कि भारत गोल्डन एज हो, तो हम सब मिलकर के अपने बच्चों को अच्छी सी गाइडलाइन देकर, उनका मेंटर बनकर, उनके अच्छे दोस्त बनकर, अच्छी माँ बनकर, अच्छा साथी बनकर ऐसा सुंदर समाज बनाएंगे। ओम शांति।